एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
तो आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, सैली हॉकशेड की हाउ द वर्ल्ड सीज यू।
हाँ, और ये किताब जो है ना वो आम सेल्फ हेल्प टाइप की नहीं है, मतलब जो कहती है कि अपनी कमजोरियां ठीक करो।
सही कहा,
ये कुछ अलग है, एक नया नजरिया।
बिल्कुल।
इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो है कि भाई अपनी कमियों पर लगे रहने से ज्यादा जरूरी है ये समझना कि दुनिया आपको देखती कैसे है, आपकी आपकी वो कौन सी खास बात है जिससे लोग आपकी तरफ खिंचते हैं, और फिर उसको इस्तेमाल करना।
और आज के टाइम में तो ये और भी ज्यादा रेलेवेंट है, मतलब इतनी आवाजें चारों तरफ, इतना शोर।
हाँ, ध्यान खींचना ही मुश्किल है।
एग्जैक्टली।
सबका टेंशन स्पैन कम होता जा रहा है।
बिल्कुल। तो ऐसे में अपनी पहचान बनाना, अपने गोल्स तक पहुंचना, इसके लिए ये जानना तो जरूरी है कि भाई हमारा सबसे असरदार रोल क्या हो सकता है, हमारी भूमिका क्या है।
एकदम। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है, ये गहरी पड़ताल वो इसी पर रहेगी कि कैसे हम अपनी उस यूनिक भूमिका को पहचाने और फिर उसे अपने काम में, अपनी जिंदगी में यूज करें सफलता के लिए, जैसा सैली बताती हैं।
चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात हो जाए, सैली हॉकशेड।
हाँ, सैली हॉकशेड कोई आम राइटर नहीं है, वो एक जानी मानी ब्रांडिंग एक्सपर्ट है। एडवर्टाइजिंग में उनका बहुत बड़ा नाम रहा है।
अच्छा।
जैसे
अरे उन्होंने मिनी कूपर, नाइकी, कोका कोला, मतलब दुनिया के कुछ सबसे फेमस और आकर्षक ब्रांड्स के लिए काम किया है। उन्हें पता है कि चीजों को यू नो फैसिनेटिंग कैसे बनाते हैं।
वाओ, मतलब ब्रांड्स को आकर्षक बनाना जानती हैं, और हॉल ऑफ फेम स्पीकर भी हैं।
हाँ बिल्कुल, उनकी बातें लोग ध्यान से सुनते हैं, मानते हैं, तो यही बात उनके अप्रोच को खास बनाती होगी शायद, कि भाई जो सिद्धांत ब्रांड्स को भीड़ से अलग करते हैं,
एग्जैक्टली।
क्या वही हम इंसानों पर भी लागू कर सकते हैं? कैसे समझें कि कोई व्यक्ति क्यों इतना प्रभावशाली है, क्यों लोग उसकी तरफ खिंचते हैं?
यही सवाल था, और इसी के चलते उन्होंने करीब 10 साल रिसर्च की और एक सिस्टम बनाया, फैसिनेशन एडवांटेज असेसमेंट।
10 साल?
अच्छा।
और इसमें डेटा भी काफी लोगों का है शायद।
हम 10 लाख से ज्यादा लोगों का डेटा इकट्ठा किया उन्होंने। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सिस्टम इस पर फोकस नहीं करता कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं।
अच्छा।
ज्यादातर पर्सनैलिटी टेस्ट तो यही करते हैं ना, अंदर क्या चल रहा है।
हाँ।
लेकिन ये सिस्टम फोकस करता है कि दुनिया आपको कैसे देखती है, आपकी बाहरी छवि, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल, आपके वो कौन से गुण हैं जो दूसरों पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं।
मतलब बाहर से अंदर की तरफ देखना, आपकी बाहरी अभिव्यक्ति और उसका प्रभाव।
बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है हमारा प्रभावी रोल और अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता।
ओके। तो इस किताब का मेन मकसद क्या है फिर?
मकसद है हमें अपनी उन स्पेशल पावर्स को पहचानने में मदद करना जिन्हें हॉकशेड फैसिनेशन एडवांटेज कहती हैं। ये वो तरीका है जिससे हम नेचुरली लोगों का ध्यान खींचते हैं, उन पर असर डालते हैं।
और एक बार जब हम अपनी इन शक्तियों को, अपने एडवांटेज को समझ लेते हैं, तो फिर
किताब बताती है कि कैसे इनका इस्तेमाल करके हम ज्यादा वैल्यूएबल बन सकते हैं, ज्यादा प्रभावी, और आखिरकार ज्यादा सफल अपने काम में, रिश्तों में, अपने गोल्स को पाने में।
अच्छा, यहाँ एक बड़ा पावरफुल आइडिया आता है, शायद पूरी किताब का निचोड़ यही है, अलग होना बेहतर होने से अच्छा है, डिफरेंट इज बेटर देन बेटर।
हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना।
हाँ, क्योंकि हमें तो हमेशा सिखाया जाता है बेस्ट बनो, सबसे अच्छे बनो।
बिल्कुल। लेकिन हॉकशेड कहती हैं कि आज की दुनिया में सिर्फ बेहतर होना काफी नहीं है, कंपटीशन इतना है, हर कोई बेहतर बनने की कोशिश कर रहा है।
तो फिर असली ताकत किसमें है?
असली ताकत उसमें है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है, आपकी वो यूनिकनेस, वो खूबी जो सिर्फ आपकी है, उसे पहचानना और उसे सामने लाना।
तो ये किताब सवाल पूछती है, इस भीड़ भरी दुनिया में जहां सबका ध्यान बटा हुआ है, हम सबसे ज्यादा वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं?
और जवाब देती है, जो आप पहले से हैं उसी का सबसे अच्छा, सबसे असरदार वर्जन बनकर, अपनी कमियों को छुपाने या बदलने की जगह अपनी यूनिकनेस को और निखार कर।
तो ये किताब हमें एक तरह की जर्नी पे ले जाती है, पहले अंदर देखो, फिर बाहर देखो कि दुनिया क्या देख रही है, लोग हमारे किस गुण की वैल्यू करते हैं।
हाँ, और इसी सफर में हम 7 फैसिनेशन एडवांटेजेस और उनसे बनने वाले 49 आर्केटाइप्स के सिस्टम से मिलते हैं।
अच्छा, ये आर्केटाइप्स क्या हैं?
ये आर्केटाइप्स हमारी उस खास भूमिका या पहचान को समझने में मदद करते हैं जिसे निभाकर हम सबसे ज्यादा असरदार हो सकते हैं। चलिए अब इन हिस्सों को थोड़ा और खोलकर समझते हैं।
ठीक है, तो पहला हिस्सा है आकर्षण का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ फैसिनेशन। हॉकशेट कहती है कि हम ध्यान भटकाव के युग में जी रहे हैं, एज ऑफ डिस्ट्रैक्शन।
लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। ऐसे में सिर्फ जानकारी देना या अच्छा काम करना ही काफी नहीं है, आपको लोगों को आकर्षित करना होगा, उनका ध्यान खींचना होगा।
और यही वो उस पुरानी सलाह को चैलेंज करती हैं कि अपनी कमजोरियों पर काम करो।
हाँ, वो कहती हैं कि ये एनर्जी वेस्ट करना है। असली मौका, असली बढ़त हमारी कमियों में नहीं है, वो हमारी भिन्नताओं में है, डिफरेंसेस में।
मतलब जिस चीज में हम नेचुरली अच्छे हैं, जो हमें दूसरों से अलग बनाती है,
हाँ
वही हमारी असली ताकत है।
बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी है कि ये सिस्टम दूसरे पर्सनालिटी टेस्ट जैसे मायर्स ब्रिग्स या डिस्क वगैरह से कैसे अलग है।
हाँ, ये आपने पहले भी कहा था। वो बताते हैं कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, हमारी सोच।
राइट। लेकिन हॉगशेड का सिस्टम ये बताता है कि दुनिया आपको कैसे देखती है, आपका कम्युनिकेशन, लोग आपके किस पहलू से सबसे ज्यादा इम्प्रेस होते हैं, ये बाहरी धारणा पर बेस्ड है।
और यही बाहरी धारणा यानी परसेप्शन तय करती है कि लोग आपको कितना वैल्यूएबल समझते हैं, खासकर प्रोफेशनल लाइफ में।
एग्जैक्टली। यहीं से हमारी प्रभावी भूमिका, हमारे रोल की नींव पड़ती है।
ठीक है, तो अब आते हैं किताब के सबसे जरूरी हिस्से पर, भाग 2.7, आकर्षण लाभ, द 7 फैसिनेशन एडवांटेजेस। ये 7 तरीके हैं जिनसे लोग असर डालते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं।
हाँ, आप कह सकती हैं कि ये 7 भाषाएं हैं जिनसे हम दुनिया से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। शॉर्ट में देखें तो ये है।
बताइए।
पहला है इनोवेशन, नवीनता। ये क्रिएटिविटी की भाषा है, नए आइडियाज लाना, हटके सोचना, जैसे कोई मीटिंग में हमेशा नया एंगल ले आता है। दूसरा, पैशन, जुनून, इमोशनल कनेक्शन। ये लोग अपने जोश से, अपने उत्साह से दूसरों को इंस्पायर करते हैं, रिश्तों में वॉर्म्थ लाते हैं। सोचिए उस कॉलीग के बारे में जो किसी प्रोजेक्ट को लेकर हमेशा एक्साइटेड रहता है।
हाँ, होते हैं ऐसे लोग।
तीसरा, पावर, शक्ति, कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग। ये लोग लीड करते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, मीटिंग में जिनकी बात में वजन होता है।
ओके।
चौथा, प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा, एक्सेलेंस, हाई स्टैंडर्ड्स। ये लोग क्वालिटी पर फोकस करते हैं, नतीजों से सम्मान पाते हैं, दूसरों को भी बेहतर करने के लिए पुश करते हैं।
ठीक है।
पांचवा, ट्रस्ट, विश्वास, भरोसा। ये लोग भरोसेमंद होते हैं, वादे निभाते हैं, चीजों को व्यवस्थित रखते हैं, टीम में जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं।
अच्छा।
छठा, मिस्टीक, रहस्य। ये लोग कम बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं, सोचते हैं, उनकी बातों में गहराई होती है, लोग उनकी राय जानने को उत्सुक रहते हैं, शांत रहकर चीजों को बारीकी से देखते हैं।
दिलचस्प है।
और सातवां, अलर्ट, सतर्कता, डिटेल्स, एक्यूरेसी, ऑर्गेनाइज्ड होना। ये लोग गलतियां पकड़ते हैं, चीजों को सही ढंग से पूरा करते हैं, रिस्क को पहले ही देख लेते हैं। तो ये 7 तरीके हैं जिनसे हम नेचुरली वैल्यू ऐड करते हैं।
बिल्कुल। अब यहां से बात और इंटरेस्टिंग होती है। भाग 3, 49 मूल रूपों का मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स ऑफ 49 आर्केटाइप्स। हॉगशेट कहती हैं कि हम सब में इन 7 में से एक प्राइमरी एडवांटेज होता है, ये हमारा मेन हथियार है, और एक सेकेंडरी एडवांटेज होता है जो हमारे प्राइमरी एडवांटेज को सपोर्ट करता है, उसे और असरदार बनाता है।
अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से,
इन दोनों के मेल से बनता है हमारा यूनिक आर्केटाइप यानी मूल रूप। ये हमारी खास पहचान है, हमारी सुपर पावर, या कह लीजिए दुनिया में हमारी सबसे प्रभावी भूमिका, रोल। किताब में ऐसे 49 कॉम्बिनेशंस, मतलब 49 आर्केटाइप्स बताए गए हैं।
कोई उदाहरण दे सकती है समझने के लिए? हाँ बिल्कुल। मान लीजिए किसी का प्राइमरी एडवांटेज इनोवेशन, नवीनता है, और सेकेंडरी पैशन, जुनून।
ओके, नयापन और जोश।
हाँ, तो इन दोनों के मेल से बनता है आर्केटाइप रॉकस्टार। ये वो लोग होते हैं जो अपने अनोखे जोशीले अंदाज से, अपने नए आइडियाज से सबको चौंका देते हैं, इंस्पायर करते हैं।
अच्छा, रॉकस्टार।
या फिर अगर प्राइमरी ट्रस्ट, विश्वास है, और सेकेंडरी अलर्ट, सतर्कता,
भरोसा और सावधानी।
हाँ, तो आर्केटाइप होगा दी एंकर। ये वो भरोसेमंद लोग होते हैं जो स्थिरता लाते हैं, बारीकियों पर ध्यान देते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ सही तरीके से हो, ये किसी भी टीम या प्रोजेक्ट की रीढ़ की हड्डी जैसे होते हैं।
हाँ, एंकर। एक और उदाहरण।
जैसे पावर, शक्ति और प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा मिलकर बनाते हैं द माइस्ट्रो। ये वो लीडर होते हैं जिनके पास बड़ा विजन होता है, हाई स्टैंडर्ड्स के साथ काम करते हैं और अपने अधिकार और एक्सीलेंस से सम्मान पाते हैं।
माइस्ट्रो। तो किताब इन सभी 49 आर्केटाइप्स के बारे में बताती है, उनकी ताकतें, उनका स्टाइल।
वो लाभ है जिसका आप सबसे कम इस्तेमाल करते हैं या जिसमें आप सबसे कम प्रभावी होते हैं।
तो ये जानना क्यों जरूरी है?
क्योंकि ये आपको बताता है कि आपको कहाँ अपनी एनर्जी नहीं लगानी चाहिए, किन कामों या रोल से बचना चाहिए जिनमें आप नेचुरली फिट नहीं होते। ये आपके रोल को और ज्यादा क्लियर करता है। सिर्फ ये नहीं कि आपको क्या करना है, बल्कि ये भी कि आपको क्या नहीं करना है।
अच्छा।
ताकि आप अपनी असली ताकत पर फोकस कर सकें।
बिल्कुल। इसके बाद किताब के भाग 4, अपने आकर्षण को काम में लाना, पुटिंग योर फैसिनेशन टू वर्क में हॉकशेट प्रैक्टिकल तरीके बताती हैं कि इस सारी जानकारी का इस्तेमाल कैसे करें। इसमें एक बहुत ही मजेदार और यूजफुल चीज है, अपना एंथम बनाना।
एंथम? जैसे कोई नेशनल एंथम? वैसा नहीं, ये आपके आर्केटाइप का सार है, एक छोटी यादगार टैगलाइन जो सिर्फ 2-3 शब्दों में बता दे कि आप क्या खास वैल्यू ऐड करते हैं।
कैसे, मतलब क्या होता है इसमें?
इसमें आमतौर पर एक वर्ब, क्रिया, आप क्या करते हैं, और एक नाउन, संज्ञा, किसके लिए या क्या परिणाम देते हैं।
अच्छा, जैसे हमने द एंकर की बात की थी
जी,
ट्रस्ट प्लस अलर्ट, उनका एंथम कैसा हो सकता है?
उनका एंथम हो सकता है स्थिरता लाना या विश्वसनीय परिणाम देना। छोटा, सीधा, पावरफुल, ये बताता है कि उनकी मेन भूमिका क्या है।
समझ गया।
किताब हमें सिखाती कि अपने एंथम कैसे बनाएं और फिर उसे अपने रिज्यूमे, लिंक्डइन प्रोफाइल, इंटरव्यू में या टीम में अपनी पहचान बताने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। ये आपके गोल्स तक पहुंचने का एक फोकस टूल बन जाता है।
ये तो काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। तो इस पूरी चर्चा से कुछ खास बातें या संदेश निकल कर आते हैं?
हाँ, कई है।
पहला और शायद सबसे अहम, अलग होना बेहतर होने से अच्छा है। अपनी उस खूबी को पहचानना और निखारना जो आपको भीड़ से अलग करती है, ये ज्यादा पावरफुल है, बजाय इसके कि आप बस थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते रहें।
दूसरा महत्वपूर्ण संदेश है, धारणा ही मूल्य निर्धारित करती है। परसेप्शन इज रियलिटी, खासकर प्रोफेशनल दुनिया में। दुनिया आपको वैसे ही वैल्यू देती है जैसा वो आपको देखती है। आपका इंटेंशन चाहे जो हो, अगर आपकी बाहरी छवि या कम्युनिकेशन उसे सही से दिखा नहीं पा रहा,
तो आपका मूल्य कम आका जा सकता है। ये सिस्टम उस बाहरी धारणा को समझने और उसे अपनी ताकत बनाने में मदद करता है।
तीसरा, प्रामाणिकता सबसे शक्तिशाली है, ऑथेंटिसिटी। ये बहुत जरूरी है। ये सिस्टम कोई नकली मुखौटा पहनने या किसी और की तरह बनने की सलाह नहीं देता,
बल्कि ये कहता है कि आप जो असल में हैं, उसी को और ज्यादा प्रभावी ढंग से कैसे सामने लाया जाए।
बिल्कुल, आपकी असली पहचान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, उसे छुपाने की जरूरत नहीं।
चौथा संदेश है, विशेषज्ञता का महत्व,
एक्सपर्टीज। अपना आर्केटाइप जानने का मतलब है अपनी खास जोन ऑफ जीनियस को पहचानना, अपनी कम्युनिकेशन स्पेशियलिटी को।
हाँ।
दुनिया को जैक ऑफ ऑल ट्रेड से ज्यादा उन स्पेशलिस्ट्स की जरूरत है जो किसी एक खास तरीके से असाधारण वैल्यू ऐड कर सकें।
हाँ।
यह आपको अपनी सही भूमिका, अपना सही रोल खोजने में मदद करता है।
और पांचवा, अपनी सुप्त क्षमता को जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये समझना कि कहाँ एनर्जी नहीं लगानी है, ये आपको अपनी असली ताकतों पर फोकस करने देता है।
हाँ, कभी कभी हमारे समाज में, खासकर भारत में, ये दबाव होता है ना एक जैसा बनने का। सब एक ही रेस में दौड़ रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या किसी सफल रिश्तेदार जैसा बनना है।
बिल्कुल, ये किताब उस प्रेशर के खिलाफ जाती है, कहती है अपनी भिन्नता को पहचानो, उसे अपनाओ, वही तुम्हारी शक्ति है।
हाँ, और इस किताब में ऐसी कई पंक्तियां हैं जो इन आइडियाज को बहुत अच्छे से कैप्चर करती हैं। कुछ यादगार कोट्स पर बात करें?
जरूर, जैसे ये वाली, अलग होना बेहतर होने से अच्छा है, यदि आप कुछ अलग नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
साफ बात है, अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं तो आप दिखेंगे ही नहीं।
एक और जो मुझे बहुत पसंद है, आपको बदलना नहीं है कि आप कौन हैं, आपको और अधिक बनना है कि आप कौन हैं।
सीधी बात है, फेक मत बनो, बस जो तुम हो उसे और बेहतर तरीके से पेश करो, अपनी ऑथेंटिसिटी को एम्प्लीफाई करो।
और ये भी गहरा है, सबसे बड़ा मूल्य जो आप जोड़ सकते हैं वो है खुद का और अधिक बनना।
आपकी यूनिकनेस, आपकी खासियत ही आपकी असली पूंजी है, उसे समझो और इस्तेमाल करो।
और आखिर में ये दिलचस्प लाइन, आप आकर्षक बनना सीखते नहीं हैं, आप उबाऊ होना भूल जाते हैं।
इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है कि शायद हम सब में नेचुरली कुछ ना कुछ आकर्षक होता है, बस हम समाज के नियमों अपेक्षाओं के चलते उसे दबा देते हैं, उबाऊ बन जाते हैं। हमें बस उस बोरियत की परत को हटाना है। वाह, तो अब सबसे जरूरी सवाल पे आते हैं, इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है, इन्हें इस्तेमाल कैसे करें?
देखो, प्रोफेशनल लाइफ में तो इसके बहुत सीधे फायदे हैं।
जैसे?
जैसे अपने रेज्यूमे या लिंक्डइन प्रोफाइल को अपने आर्केटाइप के हिसाब से तैयार करना, उन शब्दों और अचीवमेंट्स पर जोर देना जो आपकी खास शक्तियों को दिखाते हैं।
और इंटरव्यू में?
इंटरव्यू में जब पूछा जाए अपने बारे में बताएं, तो वो घिसे पिटे जवाब देने के बजाय आप अपने आर्केटाइप या एंथम का इस्तेमाल करके अपनी यूनिक भूमिका और वैल्यू को क्लियरली बता सकते हैं।
हाँ, सोचिए कोई इंटरव्यू में है और उसका आर्केटाइप है द कैटलिस्ट, पैशन प्लस इनोवेशन। जब उससे पूछा जाए कि वो टीम में क्या वैल्यू लाएगी,
तो वो कह सकता सकती है, मैं चीजों को शुरू करने और उनमें एनर्जी भरने में माहिर हूँ। मेरा एंथम है नए विचारों को हकीकत बनाना। ये तुरंत उसे दूसरों से अलग कर देगा।
बिल्कुल, और ये सिर्फ नौकरी पाने की बात नहीं है, सही नौकरी या सही रोल चुनने में भी मदद करता है। आप वो काम चुन सकते हैं जो आपके आर्केटाइप से मैच करता हो, जहां आप नेचुरली शाइन कर सकें, अपने गोल्स आसानी से पा सकें।
लीडरशिप के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। एक मैनेजर अपनी टीम के मेंबर्स के आर्केटाइप्स को समझकर उन्हें वो काम दे सकता है जिनमें वो बेस्ट है।
इससे टीम की परफॉर्मेंस भी सुधरेगी और लोग अपने काम से ज्यादा कनेक्टेड भी फील करेंगे,
और पर्सनल लेवल पर भी इसका असर होता है। ये सेल्फ एक्सेप्टेंस लाता है। आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करना छोड़ देते हैं, हर रोल निभाने की कोशिश बंद कर देते हैं। आप समझते हैं कि आपकी ताकत क्या है और कमजोरी क्या है, और आप उसके साथ ओके हो जाते हैं।
रिश्तों में भी ये समझ काम आ सकती है। अगर हम अपने आसपास के लोगों के आगे टाइप्स को थोड़ा बहुत समझ सकें, तो शायद हम उनके बर्ताव को बेहतर समझ पाएंगे, उनसे बेहतर कम्युनिकेट कर पाएंगे।
सही बात है, बेवजह के झगड़ों से बच सकते हैं। ये दूसरों के प्रति एम्पैथी बढ़ाने का भी एक तरीका हो सकता है।
इस पूरी बातचीत से अगर मुझे कोई एक चीज सबसे ज्यादा स्ट्राइक की, तो वो है अलग होने की ताकत को पहचानना। हम अक्सर दुनिया के साथ फिट होने की कोशिश में अपनी वो खासियत खो देते हैं जो हमें यूनिक बनाती है। ये किताब उस खासियत को ढूंढने और उसे शार्प करने का एक तरह का मैप देती है।
मेरे लिए सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि अपनी भूमिका, अपने रोल को क्लियरली डिफाइन करना कितना जरूरी है। जब आप जानते हैं कि दुनिया आपको कैसे देखती है, आपका आर्केटाइप, और आप उस वैल्यू को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपका एंथम, तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंस और पर्पस के साथ अपने गोल्स की तरफ बढ़ सकते हैं। ये सिर्फ ये जानना नहीं है कि आप क्या हैं, बल्कि ये जानना है कि आप दुनिया के लिए क्या करते हैं।
तो अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। ये सोचने वाली बात है कि अगर अपनी कमजोरियों को ठीक करने की इस अंतहीन दौड़ में लगे रहने के बजाय हम सब अपनी सबसे अनोखी खूबियों को समझने, निखारने और उनका जश्न मनाने पर ध्यान दें, तो हमारे काम करने के तरीकों पर, हमारी आपसी समझ पर और हमारे लक्ष्यों को पाने की क्षमता पर कितना गहरा और शायद कितना पॉजिटिव असर पड़ सकता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।